जूतों से लगी नजासत जूतों को मिट्टी पर रगड़ने से दूर हो जाती है। पानी के अलावा पाक मिट्टी भी गंदगी और नजासत को दूर करती है। हज़रत अबू सईद रदी अल्लाह अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई आदमी मस्जिद में आए तो जूते पलट कर देख ले, अगर जूतों पर गिलाजत लगी हो तो इन्हें ज़मीन पर रगड़ कर साफ़ करे, फिर इन्हीं जूतों में नमाज़ पढ़ ले। इसे अहमद और अबू दाऊद ने रिवायत किया। दूसरी रिवायत भी देख लेते हैं। बनू अब्दुल अशखल की एक औरत ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, हमारे घर और मस्जिद के दरमियान कुछ रास्ता गंदा है, यानी अगर जूतों पर गलाजत लग जाए तो क्या करना चाहिए? आपने फरमाया, क्या इसके बाद साफ़ रास्ता भी है, यानी जहाँ से गंदगी है उसके बाद कुछ रास्ता साफ़ भी आता है? औरत ने अर्ज़ किया, हाँ। आपने फरमाया, साफ़ रास्ता गंदे रास्ते के असरात ख़त्म कर देता है। इसे अबू दाऊद और इब्ने माजा ने रिवायत किया। तो इन दोनों बातों से जो बात पता चली कि रास्तों में कहीं ना कहीं गंदगी हो सकती है, तो इंसान को देख लेना चाहिए मस्जिद में आते हुए कि कहीं नीचे मिट्टी या कोई, मिट्टी तो गंदी नहीं होती लेकिन कोई गंदगी है, किसी का वेस्ट, कोई कोई और ऐसी चीज़ है तो उसको साफ़ कर ले। और अब ये जो पहली रिवायत थी कि उसी में नमाज़ पढ़ ले, तो ये कब होगा? जब मिट्टी की मस्जिद बनी होगी, कच्ची मस्जिद थी। अब ये नहीं कि अंदर कारपेट और आपके के जूतों में नमाज़ पढ़ना जायज़ है। बाज़ लोग जायज़ चीज़ को फ़र्ज़ करार दे लेते हैं। तो अब आप किसी के कारपेट पे जूतों के समेत जाएं कि देख लो कोई नजस चीज़ नहीं लगी, तो अल्लाह ने समझ भी दी है बंदे को। मुराद इससे ये है कि आप कहीं बाहर हैं, बाज़ लोग फुटबॉल खेल रहे होते हैं, बच्चों को आप भेजते हैं मैचेस खेलने के लिए, बीच में नमाज़ का वक्त आ गया, अब वो कहते हैं जी हम कैसे जूते उतारें, उतार के बाहर रखेंगे तो गुम जाएंगे, मस्जिद नहीं है, कोई बात नहीं, उन्हें कि वहीं घास पे साइड पे आप एक कोने में उन्हीं जूतों के साथ पढ़ लें, पलट के देख लेंगे नीचे कोई गंदगी तो नहीं है। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि ज़रूरत के वक्त जूते पहन के नमाज़ पढ़ी जा सकती है, और जब नमाज़ पढ़ी जा सकती है तो कुरान भी पढ़ा जा सकता है। बाज़ लोग जूते को इतना हल्का समझते हैं कि एक अलमारी, एक मौका ऐसा था कि मैंने देखा कि किसी के घर में 5-6 जो अलमारी के खाने होते हैं, और बड़ी महदूद सी हुई अलमारियाँ होती थी उस वक़्त भी, तो सबसे ऊपर में उन्होंने कुरान पाक रखे हुए थे, जो भी इस्लामिक चीज़ें थी, दूसरे में कुछ कपड़े थे, इस तरह जो ज़रूरत के, सबसे नीचे उन्होंने अपने जूते रखे हुए थे। तो किसी ने उनको इस पे टोका के दीनदार होने के नाते से कि इस एक अलमारी में जिसमें कुरान है उसमें जूते नहीं होने चाहिए। अच्छा, इस तरह का अहतमाम हमें अच्छा भी फिर बड़ा लगता है, कहते वाह ये मसला तो आज तक हमें किसी ने बताया ही नहीं। तो कुछ नहीं होता, जूता नापाक नहीं है। इंशाल्लाह इस पे बात सूरह ताहा में अगर ज़िंदगी रही तो आप उसमें सुनेंगे। तो बहरहाल ये कि वक्ते ज़रूरत जूते पहन के पड़ी जा सकती है, और दूसरी बात यह है कि रास्तों में मिट्टी है, जैसे आप भी कभी महसूस करें कि कहीं आपको शक पड़ता है कि आपका पाँव किसी ऐसी जगह पे लग गया, तो उसके बाद जो साफ़ जगह आएगी तो वहाँ होगा। यही मामला दिल का भी है, ताल्लुकात में इंसानों के साथ मामला करते हुए कभी आपका दिल गंदा हो जाता है, चलते जाइए चलते जाइए, अगले वक्त में वो दिल साफ़ हो जाएगा, लेकिन अगर आप उसको ले कर रगड़ना शुरू हो जाएं उस मामले को, तो फिर बाज़ दफ़ा बिगाड़ बहुत बढ़ जाता है। चलिए, बर्तन धोते वक्त या धोने के बाद कलमा शहादत पढ़ना सुन्नत से साबित नहीं। कुत्ता बर्तन में मुंह डाल दे तो बर्तन को 7 दफ़ा यानी 7 टाइम्स धोना चाहिए, पहली बार मिट्टी से धोने का हुक्म है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कुत्ता बर्तन में मुंह डाल दे तो इसको पाक करने का तरीका ये है कि बर्तन 7 मरतबा धोया जाए, पहली दफ़ा मिट्टी से धोना चाहिए। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया। पीछे हमने हुक्म देखा था बिल्ली के बारे में, तो बिल्ली का जूठा नापाक नहीं होता, हाँ उसमें अगर कोई गंदगी है और उसका बाल गिर गया तो और बात है, लेकिन वैसे बिल्ली पाक होती है। लेकिन कुत्ते का मामला इससे मुख्तलिफ है। अगर कहीं बाहर आपका कोई बर्तन रखा था या घर के अंदर किसी वजह से कोई आ गया, दाखिल हुआ, तो आपको शक पड़ गया कि इसमें उसने मुंह डाला है, तो अब उसको फेंकने की बजाय, क्योंकि आजकल तो समय है ही इतने, है ना, परवाह ही नहीं, हम तो अपने भी पिए हुए फ़ौरन फेंक देते हैं, एक दफ़ा पिया और उसको डिस्पोज कर दिया। लेकिन अगर ऐसा कोई मामला हो तो फिर उसमें यह है कि आप उसको धो लें, 7 मरतबा धोना चाहिए, और जो पहली बार है उसको मिट्टी से, क्यों? वही बात जो पीछे हुई कि मिट्टी में जरासीम का एंजाइम्स होते हैं, तो कुत्ते के मुँह से जो रतूबत निकलती है उसको फिर इससे पाक कर दिया जाएगा। जुम्बी को तहारत हासिल करने के लिए पानी से गुसल करना चाहिए। पानी मुयस्सर ना होने की सूरत में मिट्टी से तयम्मुम करके तहारत हासिल की जा सकती है, और ये भी हदीस आएगी, लेकिन यहाँ जो बात है वो कहे कि तहारत हासिल करना है, पानी से गुसल करेंगे, पानी ना होगा तो मिट्टी से तयम्मुम किया जाएगा, और इस पे एक पूरा टॉपिक आगे आएगा। इससे पता चलता है कि दीन इस्लाम कितना फ्लेक्सिबल दीन है, हालात और ज़रूरत के मुताबिक लोगों को मसाइल सिखाता है। ये नहीं कि बस एक हुक्म सिखाना और देना और बताना मकसद है, बल्कि यह है कि जैसे वक्त हो अपने लिए रुख्सतें ऐसी ना तलाश करो कि दीन बिगड़ जाए, लेकिन दीन की खूबसूरती का जो हुसन है उसको कायम रखो। अब देखिए कि नज़ाकत क्या होती है, कोई चीज़ मोटी, एक चीज़ बिल्कुल एक जैसी सीधी हो, भद्दी लगती है ना, एक ही स्ट्रेट सीधी हो, लेकिन कोई चीज़ कहीं से मोटी है, पतली है। आप शेप्स देखते हैं मशीनों की, आपके पास वैक्यूम क्लीनर्स होंगे, बाज़ दफ़ा गाड़ियों में और कुछ ऐसी चीज़ों में, तो जितने कर्व्स होते हैं ना, वो चीज़ उतनी खूबसूरत होती है, डेलिकेसी होती है। दीन में भी डेलिकेसी है, कहीं चौड़ा कहीं पतला, कहीं चौड़ा कहीं मोटा कहीं पतला, तो ये सब चीज़ें इंसान के मूड से ताल्लुक़ रखती हैं। इंसान एक ही चीज़ देख देख के थक जाता है, चाहे वो कितनी ही अच्छी क्यों ना हो। तो इस्लाम ने बहुत ही खूबसूरत दीन दिया कि सहूलत के मुताबिक लोग उससे फ़ायदा उठा सकें। कपड़े पर हैज़ का खून लग जाए तो इसे पानी से धोकर पाक करना चाहिए, ये मसला भी आगे आएगा। पीरियड्स का खून लग जाए तो उस कपड़े को धो के पाक कर लिया जा सकता है। मुर्दा हलाल जानवर की खाल दबागत से पाक हो जाती है। दबागत कहते हैं टेन को, खाल को रंगते हैं दूसरे रंग से। जैसे आज के दौर में अगर आप कोई पर्स देखते हैं या जूते देखते हैं तो उसके ऊपर पॉलिश हुआ हुआ है, या असल शक्ल में तो वो नहीं होती ना, तो इस तरह से अगर किसी जानवर की जो खुद से मर गया, यानी उसको इस्लामिकली ज़िबा नहीं भी किया गया, लेकिन उसकी खाल से कोई फ़ायदा उठाना चाहे तो फिर उसको ऊपर रंग ले। हज़रत मैमूना रदी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कुरैश के कुछ लोग मरी हुई बकरी को मरे हुए गधे की तरह खींच कर ले जा रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम इस मरी हुई बकरी का चमड़ा उतार लेते तो अच्छा होता। लोगों ने अर्ज़ किया, ये मुर्दार है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चमड़े को पानी और कीकर की छाल पाक कर देते हैं। इसे अहमद और अबू दाऊद ने रिवायत किया। ठीक है, तो ये किस्म का पेंट या पॉलिश है, तो इससे आप देखिए कि इस पहली चीज़ से इसे ये पता चली ना कि बकरी मर गई थी खुद ब खुद, तो लोगों ने उसे फ़ायदा उठाने की बजाय उसको फेंकने लगे। ये जो गधे की तरह खींच लेना था, मुराद क्या था कि उससे कोई फ़ायदा नहीं उठाया, ऐसे ही कि जैसे अब उनके लिए बेकार हो गई, तो अल्लाह के नबी ने इसमें भी उनको रुख्सत दी। इससे भी आपको दीन का थोड़ा सा मिजाज समझ आया। हमारे यहाँ एक बिल्कुल एक्सट्रीम पे जाने को दीन समझते हैं, हालांकि दीन मिडल में रहने का नाम है। पेशाब की निजासत पानी से दूर हो जाती है, ज़मीन खुश्क होकर खुद ब खुद पाक हो जाती है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मस्जिद नबवी में एक बद्दू ने पेशाब कर दिया, बद्दू से मुराद देहाती, लोग इसे मारने को दौड़े। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे कुछ ना कहो और इसके पेशाब पर पानी का डोल बहा दो। तुम मुश्किल पैदा करने के लिए नहीं, आसानी पैदा करने के लिए भेजे गए हो। इसे बुखारी ने रिवायत किया। इससे भी आप देखिए कि तहम्मुल और मामला फहमी समझ आती है। आज सोचे ज़रा कि कोई बद्दू तो छोड़ दें, किसी का बच्चा ही मस्जिद के प्रेइंग रूम में आके पेशाब कर दे, शायद उस औरत को वहाँ कोई थोड़ी देर भी ना ठहरने दे और इतनी बातें सुनाएं कि शायद वो बेचारी वहाँ रह ही ना सके। तहम्मुल के साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये काम किया कि लोग मारने को दौड़े। इससे पता चलता है कि बाज़ लोग बड़े बहुत ज़्यादा फौरी फौरी एक्शन लेने वाले थे, सोचते समझते नहीं है, बस भागने लगते हैं, बात भी पूरी नहीं सुनते और चलने लगते हैं। ये दुरुस्त तरीका नहीं। नुकसान क्या होता अगर लोग ऐसा करते या इस तरह से ये हो जाता? पहली बात यह है कि वो भागता, गंदगी और फैलती। अभी तो एक जगह थी, उसको साफ़ किया जा सकता था, और अगर वो गंदगी उसकी सारे में फैल जाती तो उसको साफ़ करना मुश्किल होता। फिर दूसरी बात है कि वो बेचारा अभी नया दीन सीखने की नीयत से आया हुआ था, या इस्लाम में नया नया आया, मुसलमानों के इस रवैये से वो क्या करता, भाग जाता ना। इसलिए इंसान को अपने रवैये के साथ कभी भी किसी को इस्लाम से इस तरह नहीं भगा देना चाहिए कि वो कोई काम ही ना कर सके। लेकिन हमारे यहाँ अमूमन तकवा के लिए ढूंढते रहते हैं कि लोगों को किस किस चीज़ पे हम मुश्किल में डालें। इतनी प्यारी बात कह दी कि इन्नमा बुइस्तु मुयस्सिरीन वलम तुबअसु मुअस्सिरीन। अब इसे ये नहीं मुराद कि आप कहें कि देखा हमें तो आसानियाँ पैदा करने के लिए भेजा गया, इसलिए नमाज नहीं पढ़ते, कोई बात नहीं, तुम्हें मुश्किल लगती है ना पढ़ो, सूद ले सकते हो ले लो, कोई बात नहीं, नहीं करोगे तो मुश्किल है। यहाँ मुराद ये कि जिस चीज़ में इस्लाम ने सहूलत दे दी है, जिसके साथ किसी को कोई नुकसान नहीं है, फिर उसके ऊपर तुम बेजा किस्म की सख्ती ना करो। पीने वाली चीज़ में मक्खी गिर जाए तो इसे डबोकर निकाल देने से मक्खी की निजासत दूर हो जाती है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब किसी के मशरूब में मक्खी गिर जाए तो इसे पूरी तरह डबोकर फेंक देना चाहिए और मशरूब यानी पीने की चीज़ पी लेना चाहिए। मक्खी के एक पर में शिफा है और दूसरे पर में बीमारी है। इसे अहमद बुखारी, अबू दाऊद और इब्ने माजा ने रिवायत किया। इससे आप देखिए कि एक बात तो ये पता चलती है कि उस दौर में भी मक्खियाँ होती थीं। फिर दूसरी बात यह है कि मक्खी एक पर गिराती है। आज साइंस ने इस चीज़ को साबित कर दिया कि मक्खी का एक पर जो होता है उसके अंदर जर्म्स होते हैं और दूसरे पर के अंदर जर्म्स को किल करने वाले एंटीबॉडीज़ होते हैं। और मक्खी जब भी गिरती है ना तो आड़ी गिरती है, बल्कि आपने कभी जायज़ा लिया और मक्खी को उड़ता हुआ देखें तो सीधी नहीं उड़ती, ऐसे उड़ती है जैसे टेढ़ी जहाज़ चढ़ते हुए जैसे थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है ना, इस तरह उड़ती है। तो जब वो नीचे हैवी थिंग जो मतलब जो उसकी साइड भारी है उसके ज़रिए से गिरती है पानी में या जिस चीज़ में, तो क्या किया जाए? अगर तो आपको पीना ही है ही कुछ नहीं, अब आप बैठे हुए हैं मजबूर हैं, तो फिर इतनी ही को निकालने के बजाय पूरी डबो लें। ये मसला है असल में। बस लोग ऐसी हदीसों को मिस कोट करके इतना इसके ऊपर शद्दो मत करते हैं कि देखो कैसा इस्लाम है। क्या देखिए, अल्लाह ताला कहता नहीं है कि पानी में मक्खी डाल के पियो। मक्खी गिर गई, आपको पीना तो था ही वही, आपके पास और कुछ था ही नहीं। आप रोज़े के लिए बैठे हुए थे, इफ्तारी कर रहे थे, आपके सिर्फ पानी का एक गिलास था, कुछ है ही नहीं कि आप नहीं करो। हो सकते हैं ना ऐसे हालात, ठंडा पानी है, कोई उसमें ऐसी चीज़ नहीं है, आप उसको पूरा डिप करें पी लें। आपका नहीं दिल करता उस पानी को कहीं भी ऐसी जगह दूसरे इस्तेमाल में ले लें कि जहाँ पीना नहीं पड़ता, ठीक है? चाय में गिर गई, गर्म पानी में गिर गई, चीज़ में, कोई बात नहीं, ना निकालें। लेकिन मतलब आप उसको पहले ही थोड़ी सी केयर करें। लेकिन बहरहाल एक बात, इस्लाम हमेशा आम हालात की बात नहीं करता, एक्सेप्शनल केसेस की भी बात करता है।